أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری صفات سلبیہ میں رؤیت خداوند متعال کے بارے میں چل رہی تھی. اصل مطلب جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے کہ خداوند متعال کو ظاہری آنکھوں کے ذریعے درک اور دیکھا نہیں جا سکتا, اور اس پر عقلی برہان بھی موجود ہے اور نقلی دلیلیں بھی موجود ہیں. عقلی دلیل تبیین ہو گئی تھی, وہ یہ تھی کہ اگر خداوند متعال کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال جہت میں واقع ہو. جہت یعنی سامنے آنا, مثلا مقابل, درست ہے؟ اور مقابل جو ہے یہ جہت کہلاتی ہے, سامنے ہونا, پیچھے ہونا, درست ہے, سائڈ پر ہونا, یہ ساری جہات ہیں. تو آنکھوں سے اس وقت انسان کسی چیز کو دیکھ پاتا ہے کہ جب چیز اس کے مقابل میں واقع ہو, اس کے سامنے آ جائے, تب دیکھ پاتا ہے. بس اگر قائل ہو جائیں کہ خداوند متعال کی ذات آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا مقابل رکھتا ہے, خدا سامنے آ سکتا ہے, اور مقابل رکھنا جو ہے وہ جہت کا لازمہ ہے, اور جہت جو ہے وہ جسم کا لازمہ ہے. یعنی جہت وہ چیز رکھتی ہے کہ جو جسم رکھتی ہو, جسم ہے کہ جو مقابل رکھتا ہے, جسم ہے کہ جو جہت رکھتا ہے. بس اگر خداوند متعال کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو تو لازمہ خدا کا جسم ہونا ہے, اور یہ لازمہ ہم پہلے باطل کر چکے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات جسم نہیں ہے, خدا کی وجوب کے مخالف ہے, خدا کی لامحدودیت کے مخالف ہے. دیکھیں عبارت چونکہ بیان ہو گیا تھا, اس کو عبارت کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اما عقلا, دلیل عقلی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْئِيًا, اگر خداوند متعال کی ذات مرئی ہو یعنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو, لَكَانَ فِي جِهَتٍ, تو لازم یہ آئے گا کہ خداوند متعال کی ذات جہت رکھتی ہے. اگر جہت دار ہو جائے خدا کی ذات, فیکون جسما, لازم یہ آئے گا کہ خداوند متعال جسم رکھتا ہے. وہو باطل لما تقدم, اور یہ خدا کا جسم رکھنا باطل ہے کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں. اس عبارت کے اندر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اصلا کیا ملازمہ ہے آپس میں رؤیت اور جہت کے درمیان. آپ نے کیا کہا ہے دلیل میں کہ اگر خدا کو دیکھا جا سکے تو لازمہ اس کا کیا ہے, جہت میں ہونا ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے تلازم کی کہ اگر رؤیت ہو تو جہت ہونی چاہیے, اس کی دلیل یہاں پر دیتے ہیں. بیان الاول یعنی ملازمہ, پہلے ملازمہ کا بیان کیا ہے کہ ان کل مرئین فہو اما مقابل او فی حکم المقابل, کیونکہ جو بھی چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے وہ یا تو مقابل میں ہونی چاہیے یا حکم مقابل میں ہونی چاہیے. حکم مقابل کون ہے؟ کصورت فی المرآت, جس طریقے سے آپ ایک صورت کو مرآت, ایک شکل کو کیا ہے, شیشے میں دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اگر فرض کریں قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں اور وہاں پر شیشہ لگا ہے اور آپ کے پیچھے جو چیزیں پڑی ہیں آپ ان کو نہیں دیکھ پاتے, لیکن آپ شیشے کے اندر سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب شیشے میں جو تصویریں منعکس ہو رہی ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ مقابل تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو پیچھے ہیں, سامنے تو نہیں ہے, پیچھے ہیں وہ, لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ ان کی تصویریں منعکس ہو رہی ہیں, کس میں؟ شیشے کے اندر, آئینے کے اندر ہو رہی ہیں. آئینہ چونکہ آپ کے سامنے ہے اور آئینہ جو ہے دکھا رہا ہے پچھلی چیزوں کو, بس اس وہ چیزیں جو آئینے کے اندر نظر آ رہی ہیں وہ حکم مقابل میں ہیں, خود مقابل نہیں ہیں. वज़ालिका ज़रूरीयुन, कहते हैं कि असलन देखने के लिए मुकाबिल या हुक्म मुकाबिल में होना जरूरी व बदीही है, क्योंकि आंखों के जरिए आप उस वक्त तक देख ही नहीं सकते आंखों से जब तक कि एक चीज आपके सामने ना आ जाए, ये जरूरी व बदीही है। खूब, वकुल, अगला इस्तदलाल। ये तो यहां तक साबित हो गया कि हर आंखों से देखी जाने वाली चीज मुकाबिल रखती है, यानी जेहत रखती है, दुरुस्त है ना, मुकाबिल रखती है, यानी सामने होना या सामने होने के हुक्म में होना रखती है। ये अगला इस्तदलाल, अगला मुकदमा हमारा। वकुल्लु मुकाबिलिन औ फी हुक्म ही फहुवा फी जहतिन, हर मुकाबिल और हुक्म मुकाबिल क्या है, जहत में होता है, यानी सामने होना यानी जहत रखता है वो, जहत रखता है वो, जहत के अंदर है। बस साबित हो गया कि हर वो चीज के जो मरई हो वो जहतदार होती है। फलौ कानल बारी तआला मरईयन, अगर हम कायल हो जाएं कि खुदावंद मुताल की जात मरई है, आंखों से देखी जा सकती है, लकाना फी जहतिन, तो लाजिम ये आएगा कि खुदावंद मुताल की जात जहत में है। बस साबित हो गया, जहत जो है वो जिस्म का लाजिमा है, ये भी काबिल इस बात है, मुश्किल नहीं है, और इसको यहां पर इन्होंने जिक्र नहीं किया। और खुदा की जात चूंकि जिस्म नहीं रखती, बस खुदा मरई भी नहीं है। अम्मा समान, दलील नकली यहां पर जिक्र करते हैं, रिवायात को, आयात को नकल करते हैं यहां पर, कि आयात का जहूर इस बात में है कि खुदावंद मुताल को आंखों से नहीं देखा जा सकता, चूंकि ये मतालिब बयान हो गए हैं, लिहाजा इबारत ही के साथ चलते हैं। अम्मा समान फले वजूहिन, दलील नकली जो है वो उसकी चंद जिहतें हैं, मतलब चंद दलीलें जिक्र करते हैं। अल अव्वल, पहली दलील नकली ये है कि इन्ना मूसा लम्मा सअल रुयता उजीबा बे लन तरानी, यानी जब जनाब मूसा अलैहि सलाम ने खुदा की रुयत का सवाल किया, चूंकि जनाब मूसा अलैहि सलाम के जो उम्मती थे उन्होंने ये तकाजा किया, दुरुस्त है, मसलन यूं था, लम्मा जा अब मूसा ले मीकातेना वकल्लमहु रब्बो काला रब्बे अरनी अनगुरु इलेका, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम हमें खुदा कहता है कि मिलने के लिए मीकात पर आए और रब ने उससे कलाम किया, तो जना मूसा ने ये कहा कि रब्बे अरनी, कि परवरदिगारा तू अपने आप को मुझे दिखला ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, काल लन तरानी, तुम कभी भी मुझे नहीं देख सकते। जब मूसा अलैहि सलाम ने सवाल किया रुकियत का, तो जवाब दिया गया कि लन तरानी, कभी नहीं देख सकते। अब इस्तदलाल ये है कि ये जो अरबी के अंदर लफ्ज लन इस्तेमाल होता है लिनफ्य तअबीद, ये हमेशा के लिए नफी करने के लिए इस्तेमाल होता है, मुतलक है, दुनिया व आखरत के साथ मुकय्यद नहीं है। नकलन अन अहले लुगा, और ये दलील जो है कौन देते हैं, अहले लुगत, अहले लुगत ने बयान किया है कि लफ्ज लन जो है ये नफी तअबीद के लिए आता है। खूब, व इज़ा लम यराहु मूसा, अब जब जनाबे मूसा ही ना देख पाए खुदावंदे मुताल को, लम यरा गैरहू बितरीकिन औला, तो दूसरे के अंदर तो असलन सलाहियत ही नहीं है कि वो खुदावंदे मुताल को देख सके, वो बितरीक औला जो है खुदावंदे मुताल को नहीं देख पाएगा। ये पहली दलील थी। दूसरी दलील फरमाते हैं कुरान की आयत एक और है, सूरह अनआम की। वो पहली जो आयत थी वो सूरह आराफ की आयत नंबर 143 थी, और ये वाली आयत जो है सूरह अनआम की आयत नंबर 103 है। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, ला तुदरिकुहुल अबसार वा हुवा युदरिकुल अबसार, खुद के अबसार आंखें खुदा को दर्क नहीं कर सकती, हाँ खुदा अबसार को दर्क कर सकता है। खुदावंद मुताल अपने इस कौल के जरिए क्या कर रहा है, ये आयत तमदहु बिन्नफ्ये इदराकिल अबसार लहू, ये आयत मदहा सराई कर रही है खुदावंद मुताल की कि उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। यानी नफ्य दर के अबसार के जरिए आयत खुदा की तमजीद व मदह कर रही है। फयकून इस बात हु लहू नफसा, पस जब नफ्य दर के अबसार मदह है खुदा की, मदहसराई है खुदा की, तारीफ है खुदा की, तो अब कोई अगर खुदा के लिए रुकियत को साबित करेगा तो ये इस बात क्या होगा, नक्स होगा खुदा के लिए। फयकून इस बात हु लहू नक्सा, तो इस इदरा के अबसार को साबित करना खुदा के लिए ये नक्स शुमार होगा। बस मालूम हुआ कि खुदा बंद मुताल अगर देखा जाए आंखों से तो नक्स लाजम आएगा। तीसरी दलील यहां पर देते हैं कि अन्नहु तआला इस्तअज़्ज़मा तलब रुकियत ही, खुदावंद मुताल ने इंतहाई बुजुर्ग जाना है रुकियत के तलब किए जाने को। यानी कहते हैं ना बहुत बड़ी चीज तुमने पूछ लिया, हमने कहते हैं उर्दू में बाद से कोई बंदा ऐसी बात कर ले कि जो अनहोनी हो, कहते हैं तुमने बहुत बड़ी बात कर ली, नहीं कैसे तुम ये कर सकते हो। इस्तअज़्ज़मा रुकियत तलब रुकियत ही, खुदा ने बुजुर्ग जाना है किसको, रुकियत को तलब करने को। बुजुर्ग जाने से क्या मुराद है, बुजुर्ग जाने से मुराद ये है कि खुदा बंदे मुताल अंदाई ताजुब किया है खुदा के तलब रोइयत कर रहे हैं। ورتب الذم عليه بالوعيد, और तलब करने पर खुदा ने फिर क्या किया है, जम और वईद को मुरतब किया है, यानी तलब रोइयत करने वालों की मजम्मत की है और उनको अजाब की धमकी दी है। वईद यानी डराना। फकाला, तो यूं आया, फकद सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, जनाबे हमारे खत्मी मर्तबत को ये कहा जा रहा है कि उन लोगों ने जनाबे मूसा से इससे भी बढ़कर चीज मांगी। असल में बात क्या हो रही थी, कहते हैं यस अलुका अहलुल किताब अंतुनज़िल अलैहिम किताबन मिन समा, अहले किताब ये कहते थे कि उनके ऊपर भी किताब जो है वो नाजिल हो खुदावंद मुताल की तरफ से। फिर बाद में कहते हैं कि वकद सअलू, तुमसे तो ये सवाल कर रहे हैं, फकद सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे भी ज्यादा सवाल किया है उन्होंने। क्या सवाल किया है, फकालू उन्होंने कहा अरिनल्लाह जहरतन, हमें खुदा को वाज़ह और रोशन सूरत में दिखाओ तब हम खुदा को मानेंगे। فأخذتهم الصاعقة بظلمهم, बिजली ने आकर उनको घेर लिया, किस वजह से, بظلمهم, उन्होंने जो जुल्म किया था उस जुल्म की वजह से बिजली ने उनको घेर लिया। जुल्म क्या था, तलब रुइयत की है उन्होंने, बस ये अजाब नाजिल हुआ उनके ऊपर। पूरी इबारत है, असल शाहिद यही था। बस मालूम हुआ कि कुरान सख्ती से इस बात की नफी कर रहा है कि खुदावंद मुताल को आंखों से नहीं देखा जा सकता। बता दो ये, खूब ये मतलब हमारा तमाम हो गया। काला अल खामिसतु फी नफी शरीक अनहु लिस्समअ वलित्तमानु फयफसदु निजामुल आलम निजामुल वजूद वलिस्तिल्जामहि अरतरकीबा लिश्तराक الواجبين في كونهما واجب الوجود فلا بد من مائز। ये बहस अब तौहीद परवरदिगार के बारे में है, यानी नफ़ी शरीक के बारे में है कि खुदावंद मुताल का कोई शरीक भी नहीं है, यानी खुदावंद मुताल वाहिद है, यानी इस सिफत के अंदर खुदा की वहदत को साबित करना चाहते हैं। यहां पर फिर दो बुरहानों को जिक्र करते हैं। एक बुरहान वो है कि जिसको कुरान ने भी जिक्र किया है और जिसको मुतकल्लमीन भी अपनी किताबों में नकल करके आए हैं कि जिसको बुरहान तमानो कहते हैं। दूसरा बुरहान जो है वो फलसफियों का जिक्र करते हैं कि जो जन फलासफा खुदावंद मुताल की तौहीद को साबित करने के लिए और नफी शरीक को साबित करने के लिए बयान करते हैं। बस यहां पर दो बुरहान जिक्र करेंगे। तीसरा बुरहान जो यहां जिक्र करते हैं वो है आयात कुरानी यानी नकली दलील को जिक्र करते हैं। बस तौहीद के साबित करने के लिए और शरीक की नफी के लिए तीन बराहीन हैं हमारे पास, बुरहान नकली और बुरहान अकली के अंदर बुरहान तमानो और एक बुरहान बुरहान नफी तरकीब है या बुरहान फलसफी आप उसको कह लें, ये जिक्र करते हैं यहां पर। जो रिवाया यहां जो क्या नाम है बुरहान नकली हैं हमारे पास, मतलब मुतअद्दिद आयात हैं कि जिसके अंदर सराहत से ये कहा गया है कि खुदावंद मुतआल की जात वाहिद है। मसलन सूरह तौहीद के अंदर कहा जा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद कि खुदा की जात यागाने है, एक है, तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। और फिर कहा वलम यकुन लहू कुफवन अहद, खुदा का कोई हमसान भी नहीं है। बस ये आयात साबित कर सूरह तौहीद ये साबित करती है कि खुदा वंदे मुताल का शरीक कोई नहीं है और वो वाहिद और तन्हा है। इसी तरीके से सूरह अनआम की आयत नंबर 163 के अंदर ये इरशाद होता है ला शरीक लहू, खुदा बंदे मुताल का कोई शरीक नहीं है। वबिज़ालिका उमिरतु, और इसी के ऊपर मुझे भेजा गया है, आमर किया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं पहले मुसलमानों में से हूं। कि इसकी तफसीर मुफस्सरीन ने बयान की है कि अब्दुल मुस्लिमीन से क्या मुराद है, हमारा शायद मिसाल ला शरीका लहू है। इसी तरीके से सूरह इसरा की आयत नंबर 111 के अंदर इरशाद होता है वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, असलन खुदा वंदे मुताल का इस मुल्क के अंदर कोई शरीक भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी आयात मौजूद हैं। बस पहली जो दलील है हमारे पास वो है दलील नकली के जो इसके अंदर जिक्र की है इन्होंने। देखें इबारत अकूलो, मतन को हम बाद में पढ़ेंगे। इत्तफ़क़ल मुतकल्लमूना वल हुकमा, मुतकल्लमीन और हुकमा फलासफा मुत्तफिक हैं इस बात पर क्या कि अला सल्ब शरीक अनहु तआला कि खुदावंद मुताल का कोई शरीक नहीं है। ले वजूहिन, और इसके ऊपर मुतअद्दिद इस्तिदलाल लेकर आते हैं। अल अव्वल, पहला इस्तिदलाल अद्दलाइल सम्ईया अद्दालते अलै, दलाइल नकलिया हैं कि जो नफ़ ये शरीक पर दलालत करते हैं। व इजमाउल अंबिया, और तमाम अंबिया का एक बात पर मुत्तफिक होना ये खुद दलील है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है। आप हजरत आदम से लेकर जनाब खत्म मरतबत तक सबको ये कहता सुनेंगे कि खुदा वंद मुताल का कोई शरीक नहीं है, और अंबिया का इजमा जो है वो हुज्जत है, दुरुस्त है। अब कोई बंदा आकर ये एतराज करे आकर कि आप अंबिया के इजमा से इस्तिफादा कर रहे हैं, ये दलील आपकी ठीक नहीं है। क्यों? इस वजह से कि अंबिया को पहले साबित करें कि ये खुदावंद मुताल की तरफ से हैं और फिर आप आकर इस्तिदलाल करें। जवाब हमारा यह है कि ना भाई, अंबिया के इजमा का हुज्जत होना ये मौकूफ नहीं है खुदावंद मुताल की तौहीद के ऊपर। दोस्त है, अंबिया का खुदावंद मुताल की तरफ से आना मौकूफ है कि खुदा के वजूद को साबित करें, यानी खुदा के वजूद को अगर आप साबित ना करें और फिर आप अंबिया के इजमा से इस्तिफादा करें तो दलील नहीं बनती है, क्योंकि आपने अभी तक साबित ही नहीं किया है कि इनको भेजने वाला कोई है और वो है खुदा की जात, कि जो झूठ नहीं बोलती, जो है वो गलती नहीं करती। दुरुस्त है, ये नुमाइंदे हैं उसके। अगर खुदा के वजूद को साबित करने के लिए हम इजमा उल अंबिया से इस्तिफादा करें तो फिर दो है, फिर बात दुरुस्त नहीं है, फिर गलत है, चूंकि अभी हमने खुदा को साबित ही नहीं किया है। तो खुदा को साबित करने के लिए आप कहते हैं चूंकि सारे अंबिया कह रहे हैं कि खुदा है बस मानो, आगे दौर लाजिम आएगा। लेकिन हम यहां पर खुदावंद मुताल की तौहीद को साबित करना चाह रहे हैं, और खुदावंद मुताल की तौहीद पर मौकूफ नहीं है इजमा उल अंबिया का हुज्जत होना। यानी ऐसा नहीं है कि हम जब तक खुदा की तौहीद साबित नहीं करेंगे तो अंबिया के इजमा से हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। नहीं, हमने जब साबित कर दिया कि खुदा नाम की एक हस्ती है इस कायनात में, कि जिसने इस कायनात को बनाया है ये उसके नुमाइंदे हैं, वह इतना जब साबित हो गया तो हम इसके बाद फिर अंबिया की बातों को हुज्जत मानेंगे। उसमें से एक बात के जो हुज्जत है हमारे लिए, जो अंबिया ने जिक्र किया, वो ये कि वो खुदा के जिसको आपने दलील अकली से साबित कर दिया है और तुम समझ गए हो कि इस कायनात का वो खुदा है, वो खुदा है भी एक। दुरुस्त है, तो लिहाजा हम तौहीद के मसले में इजमा ए अंबिया से इस्तेफादा कर सकते हैं, उसको दलील बना सकते हैं। हाँ, खुदा के वजूद के अंदर हम इजमा उल अंबिया को दलील नहीं बना सकते। यहां ये चीज बयान करते हैं, वह इजमा उल अंबिया, और एक दलील हमारे पास जो है वो अंबिया का इजमा है, यानी तमाम अंबिया ने कहा है कि खुदा वाहिद है। वह हुआ हुज्जत होना, और तौहीद के मसले में अंबिया का हुज्जत होना, अंबिया का इजमा हुज्जत है। क्यों? ले अदम तवक्कुफ सिदकहिम अला सुबूत अलवहदानिया, चूंकि अंबिया का सच्चा होना मौकूफ नहीं है कि खुदा की वहदानियत को पहले साबित किया जाए। अंबिया का सच्चा होना खुदावंद मुताल के वजूद पर साबित है कि खुदा हो और खुदा ने भेजा हो इस इन अंबिया को। इसको जब आप साबित कर देंगे तो फिर, चूंकि जब खुदा ने इन अंबिया को भेजा है, तो इन अंबिया के बारे में फिर हम बहस करेंगे कि ये अंबिया जिसको खुदा ने भेजा है वो मासूम भी हैं। दुरुस्त है, तो उनकी सच्चाई जो है इस तरीके से साबित हो जाएगी। तौहीद के मसले पर ये बात मौकूफ नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप तौहीद को साबित करेंगे तो इनका सच्चा होना साबित होगा। नहीं, तौहीद के ऊपर नहीं, तौहीद को ना भी माने तो फिर भी ये मुमकिन है सच्चे हों। दुरुस्त है, ले अदम तवक्कुफ सिदकहिम अला सुबूत अलवहदानिया, चूंकि इनकी अंबिया का सच्चा होना मौकूफ नहीं है कि हम पहले साबित करें कि खुदा वाहिद है, बस इनका इजमा हुज्जत है। ये एक दलील थी। दूसरी दलील जो यहां पर जिक्र करते हैं वो है मुतकल्लमीन की दलील, के जो कुरान से माखूज है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 से। कुरान में खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्ला लफसदता, अगर इस कायनात में, जमीनों आसमान में मुतअद्दिद खुदा हो तो फिर क्या लाजिम आएगा? लफसदता, तो जमीनों आसमान निजामुल वजूद फासिद हो जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा, बाकी नहीं रहेगा ये वजूद, निजाम का वजूद का निजाम। सुभान अल्लाह रब्बिल आर्श अम्मा यासिफून, खुदा वंदे मुताल मुनज्जा है, पाक है उन चीजों से कि जो खुदा की तरफ निस्बत दी जाती है। इस आयत से फिर बुरहान तश्कील दिया मुतकल्लमीन ने कि जिसका नाम रखा बुरहाने तमानो। बुरहाने तमानो क्यों कहा जा रहा है यहां पर? क्योंकि यहां पर बहस ये होगी कि अगर दो खुदा हों आया ये एक दूसरे के लिए माने बनेंगे या नहीं बनेंगे। दुरुस्त है? बुरहान इस तरीके से तश्कील देते हैं, कहते हैं कि अगर इस फर्ज कर लेते हैं कि इस कायनात में दो खुदा हैं, अब यहां पर चंद सूरतें काबिले तसव्वुर हैं। वो ये कि खुदा, एक खुदा एक जिस्म के अंदर हरकत को ईजाद करता है और दूसरा खुदा ये चाहता है कि ये जिस्म के जिसको मुतहर्रिक बनाया है पहले खुदा ने ये साकिन रहे। अब यहां पे क्या होगा? यहां पर अब ये सूरत हाल में जिक्र होंगी कि आया इस दूसरे खुदा की इरादा जो है वो नाफिज होगा या नहीं होगा, यानी दूसरा खुदा जो चाहता है कि ये साकिन हो, अब उसका ये इरादा नाफिज होगा या नहीं होगा, यानी वो असर करेगा उसके अंदर या नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं कि दूसरे खुदा का इरादा जो है वो नाफिज होगा, दूसरे खुदा की मुराद वाकई हो जाएगी, तो फिर क्या लाजिम आएगा? यानी ना, पहले का तो वाकई है, उसने इरादा किया कि ये मुतहरिक हो, इसने इरादा किया कि ये क्या हो, साकिन हो, दोनों का इरादा जो है वो वाकई हो जाए, तो लाजिम क्या आएगा? जम उल मुतनाफियन, दो मुतनाफी चीजें जमा हो गई हैं, यानी ये जिस्म मुतहर्रिक भी है और साकिन भी है। नहीं हो सकता एक जिस्म मुतहर्रिक भी हो और साकिन भी हो, बस दोनों का इरादा नाफिज होना मुहाल है। खूब, दूसरी सूरत ये बनती है कि दोनों का इरादा नाफिज ना हो, यानी ना तो अव्वल खुदा का जो इरादा, पहले खुदा का जो इरादा था वो भी वाकई नहीं होता और दूसरे खुदा का इरादा भी वाकई नहीं होता। तो लाजिम क्या आएगा? लाजिम आएगा कि जिस्म हरकत और सुकून से खाली हो, और ये हम पहले बुरहानी तौर पर साबित कर चुके हैं कि एक जिस्म हरकत और सुकून से खारिज नहीं हो सकता। जिस्म या साकिन है या मुतहर्रिक। तीसरी सूरत यह बनती है कि एक खुदा का इरादा नाफिज हो जाए लेकिन दूसरे खुदा का इरादा नाफिज ना हो। सवाल यहां पर यह होगा कि ये जो एक खुदा का इरादा नाफिज कर गया, दूसरे खुदा का इरादा नाफिज नहीं हुआ, क्यों? सबब क्या है इसका? कहते हैं कोई सबब नहीं, उसका नाफिज कर गया, इसका नाफिज कर गया। हम कहेंगे अगर कोई सबब नहीं बना के तो फिर तरजीह का मरज है, क्योंकि वो भी वाजिबुल वजूद है, ये भी वाजिबुल वजूद है, वो भी कादिर है, ये भी कादिर है, उसके सामने भी माने नहीं है, इसके सामने भी माने नहीं है, तो इसका इरादा नाफिज क्यों कर गया, उसका क्यों नहीं किया? तरजीह का मरज लाजिम है। चौथी सूरत यह बनती है कि मतलब कहते हैं हाँ, मसलन ये ठीक है, ये वाजिबुल वजूद है लेकिन ये नहीं कर सका, ठीक है, को मुश्किल आ गई, ये नहीं कर पाया, तो क्या लाजमी आ गया वाजिबुल वजूद नहीं है? बस हमने तो वाजिबुल वजूद के लिए साबित किया हुआ कादिर अल इतलाक है, आजिज उसके अंदर नहीं पाया जाता, अगर आजिज हो जाए तो आजिज को हम खुदा नहीं मानते। बस अगर एक खुदा का इरादा नाफिज हो, दूसरे का इरादा खुदा, दूसरे खुदा का इरादा नाफिज ना हो, तो फिर क्या है? आजिज लाजिम आता है, और आजिज जो, आजिज जो चीज जात हो वो खुदा नहीं बन सकती। बस आप जो भी सूरत मुतसव्वर कर लें, دو خدا لازم نہیں آتے، اگر دو خدا ہوں تو ہر صورت میں محال لازم آئے گا. دیکھیں آسان. دوسری دلیل کیا ہے؟ دلیل المتکلمین، متکلمین کی دلیل ہے. وہ یسمی دلیل التمانو، اور اس دلیل کو تمانو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دلیل التمانو. وہو ماخوذ من قوله تعالی، اور اس برہان کو اخذ کیا ہے قرآن سے، کہ خدا کا جو یہ قول ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا، اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے خدا کے علاوہ تو یہ نظام فاسد ہو جاتا. وتقلیلہ، اس دلیل کا کیسے ہم بیان کریں؟ اس طریقے سے ہم بیان کریں گے، انہ لو کان معہ شریکن، اگر خدا کے ذات، خدا کی ذات کے ساتھ کوئی شریک ہو، لازم فساد و نظام الوجود، لازم ہی آئے گا کہ وجود، نظام الوجود جو ہے وہ فاسد ہو جائے. وہ باطل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وجودی نظام جو اس عالم کا جو نظام ہے وہ فاسد نہیں ہے. بیان ذالک، انہ لو تعلقت ارادت احدہما بایجاد جسم متحرک، اگر ایک خدا کا ارادہ یہ ہو جائے کہ جسم متحرک کو ایجاد کرے، ایسے جسم کو ایجاد کرے کہ جو کیا ہو، متحرک ہو، فلا یخلو ان یمکن للآخر ارادت سکونہ او لا، اب دوسرے کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس جسم کے سکون کا ارادہ کرے یا نہ کرے، یعنی دو صورتیں بنیں گی، وہ ارادہ سکون کا کرے گا یا نہیں کرے. ارادہ سکون کا کرنا یا نہ کرنا ممکن ہے اس کے لیے، یعنی یا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یوں اس کا ترجمہ بنتا ہے. یعنی فلا یا خلو تو خالی نہیں ہے ان صورتوں سے کہ ان یمکن للآخر، دوسرے خدا کے لیے ممکن ہو ارادت سکون ہی، اس جسم کے سکون کا ارادہ، او لا یمکن، یا ممکن نہ ہو. فَإِنْ أَمْكَنَ، اگر ممکن ہو سکون کے ارادے کا کرنا، تو اس صورت میں فلا یخلو اِمَّا اَنْ يَقَعَ مُرَادُهُمَا، اب یہاں پر پھر یہ صورت آئے گی کہ اب صورتحال یہ بنے گی کہ دونوں کی مراد واقع ہوگی، فیلزم اجتماع المتنافی ہیں، تو لازم آئے گا کہ جمع المتنافی ہو جائے، یعنی حرکت اور سکون ایک ہی جسم میں کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. او لا یقع مرادہما، یا دوسری صورت بنتی ہے کہ دونوں کا ارادہ نافذ نہ ہو، دونوں کی مراد پوری نہ ہو، فیلزم خلو الجسم عن الحرکت والسکون، اور پھر لازم یہ آئے گا کہ ایک جسم ہے جو نہ حرکت رکھتا ہے نہ سکون رکھتا ہے، اور یہ بھی باطل ہے، چونکہ ہم پہلے برہان عقلی سے اس کو ثابت کر آئے ہیں. خوب، یہ ایک صورت تھی. او یقع مراد احدہما، یا ہم کہیں کہ نہ ان میں سے کسی ایک کی مراد واقع ہوگی، ففیہ فسادان، اگر اس صورت کو مانو گے تو پھر دو فاسد لازم آئیں گے یہاں پر. احدہما الترجیب الی مرجح، پہلا جو فاسد لازم آئے گا یہاں پر وہ ہے ترجیح بلا مرجح. کیوں؟ کیوں سوال یہ ہوگا کہ کیوں الف نے اپنے اس کی مراد پوری ہوگی، بے کی مراد کیوں پوری نہیں ہوئی ہے؟ درست دونوں واجب الوجود ہیں، دونوں قادر ہیں. وسانی ہے ماں، اور دوسری صورت یہ فاسد لازم آئے گی، عجز الآخر، آپ کہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکا وہ مثلا، تو کسی کا مطلب یہ عاجز ہے، عاجز خدا نہیں ہوتا. اچھا یہ تھا ایک، فَإِن لَّمْ يَكُن لِّلْآخَر إِرَادَةٌ سُكُونِهِ، اگر دوسرا جو ہے وہ سکون کا ارادہ اس کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے. یہ بات کہاں چل رہی تھی؟ ہم نے دوسرے خدا کے لیے دو صورتیں فرض کی تھی، یا تو اس کے لیے ارادہ سکون ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. ممکن کی صورت ہم نے پڑھ لی ہے، صورتحال وہاں بھی مشکل پیش ہے. اب یہ صورت ہے کہ یہ دوسرا خدا سکون کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی جب پہلے نے جسم کو متحرک بنانے کا ارادہ کر لیا ہے تو دوسرا اب اس کے سکون کا ارادہ نہیں کر سکتا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرْ دوسرے خدا کے لیے اگر ممکن نہ ہو ارادت سکون ہی جسم کے ساکن ہونے کا ارادہ کرنا فَيَلْزَمْ عَجْزُو تب بھی اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا چونکہ نہیں کر پا رہا سکون کا ارادہ اِذْ لَا مَانِعَ إِلَّا تَعَلُّقُ تَعَلُّقَ لَا مَانِعَ إِلَّا تَعَلُّقُ اِرَادَتِ ذَلِكَ الْغَيْرِ کیونکہ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے مانے چیز فقط ایک ہے وہ کیا ہے کہ پہلے خدا نے ارادہ کر لیا ہے چونکہ پہلے خدا نے حرکت کا ارادہ کر لیا ہے بس اس کے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ یہ سکون کا ارادہ کر سکے بس جو چیز مانے بن رہی ہے وہ غیر کے ارادے کا تعلق ہے لیکن عجز الالہ والترجیح بلا مرجح محالون بس ہم نے دیکھا جو بھی آپ صورت مانیں اس میں یا ترجیح بلا مرجع لازم آ رہی ہے یا کیا ہے عجز ہونا لازم آ رہا ہے درست ہے عاجز ہونا لازم آ رہا ہے یہ دونوں چیزیں محالون محال ہیں اصل ممکن نہیں ہے خدا ہو اور وہ عاجز ہو اصل ممکن نہیں ہے کہ اصل فلسفی طور پہ ثابت نہیں ہے کہ ترجیح بلا مرجع ہوتی ہے نہ نہیں ہوتی بس نتیجہ کیا نکلا فیلزم فساد النظام پس لازم ہی آئے گا کہ نظام فاسد ہو جائے گا کیونکہ ایک چیز کیا ہوگی یا ساکن نہیں ہے اس متحرک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تب بھی فاسد نظام لازم آئے گا اگر جو ہے وہ دونوں کا ارادہ نافذ نہ ہو تو ایک وہ پھر تو ہی ثابت ہو جائے گی اگر دونوں کا ارادہ نافذ ہو جائے تو ہر جو مرض لازم آئے گا ایک کہے گا سورج نکلے دوسرا کہے سورج نہ نکلے ایک کہے گا بارش ہو دوسرا کہے گا بارش نہ ہو بس اس طریقے کی ہر جو مرض لازم آئے گا وہ محال ایزن اور یہ بھی کیا ہے محال ہے کیوں محال ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام عالم جو ہے وہ فاسد نہیں ہوا اس کے بعد جو ہے وہ فلاسفہ کا برہان ہے کہ یہ بات تمام ہو جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ